ओम शांति। हम बाबा के बच्चे तो बन गए, बाबा को हमने पहचान लिया।
अच्छा, और इस क्लास के बाद यदि किसी को प्रश्न है तो दीदी से पूछ सकते हैं।
हमने बाबा को पहचाना, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, बाबा के बच्चे बन गए। संगम युग का पता लगा, दुनिया वाले कलयुग में है ना अभी तक, उनको तो संगम का पता नहीं। तो दुनिया में हम रहते हैं, आप में से कितना है जिसका पूरा परिवार ज्ञान में है, जरा हाथ उठाना। आधे से काम। तो आप लोगों को अनुभव है कि परिवार क्या है, और जब परिवार में कोई भी कलयुगी है या ब्राह्मण नहीं है तो नेचुरली है संबंध में, विचारों में मतभेद हो जाता है। बल हम सुख के सागर के बच्चे हैं, परंतु संबंधों के कारण, कर्मों के हिसाब के कारण दुख तो मिलता रहता है। दुनिया में दुखों की लिस्ट देखी जाए कितनी है। अभी अभी मुरली में था, बच्चा नहीं है तो दुख है, बीमार है तो दुख है, मर गया और भी दुख हो गया। तो परिवार में कोई भी बीमार है, मित्र संबंधी खुद दुख तो होता ही है, उस समय खुशी या नशा रहता है। कौन है जो सदैव नशे में रहते हैं, जरा हाथ उठाना। सदैव दुख की लहर नहीं आती कभी। हाँ, अम्मा मरे तो, हाँ, पति बच्चा कोई भी परिवार में मरे, रोना नहीं आता। क्या होता है, कोई बीमार है मर जाता है, कितना भी करो दुख की लहर आ जाती है। तो ये देखना है कि हमारे पास सुख का और खुशी का और नशा इतना हो जो दुख, अशांति, भय, चिंता, टेंशन कुछ भी ना हो, तब हमें खुशी और नशा रहेगा। क्योंकि जरा भी टेंशन भी हुआ ना तो शांति नहीं रहेंगी, सुख नहीं रहेगा। भय, देखो मौत का सबको भय है, और आजकल तो कोरोना का भी कितना डर है। आधे लोग कैंसिल हो गए कोरोना के डर के कारण। हाँ, या तो खुद डरते हैं या तो परिवार वाले डरते हैं, कहेंगे नहीं जाओ भाई, बीमार हो के आएंगे, कौन लाखों का खर्च करेगा। तो सैटेलाइट सेंटर से भी 44 आने वाले थे, 36 आए, और मालेगांव से भी आधे आए डर के कारण, कोरोना के कारण। और आजकल तो सरकार भी महाराष्ट्र से आने वालों को टेस्ट करा के आना पड़ा कि ऐसे ही आना आ गए हैं, टेस्ट करा के आओ टेस्ट करा के जाओ। गुजरात वालों को तो ऐसे ही आने दिया ना, गुजरात वाले ऐसे ही आ गए, पर महाराष्ट्र में है मालेगांव वाले। अच्छा, हमारी संगीता तो टेस्ट करा के गई है और उसको कहा है टेस्ट करा के आना। तो क्या है कि डर सबको है और चिंता है, क्योंकि कईयों की नौकरी चली गई, कईयों के धंधे बंद हो गए, कईयों के पास खाना नहीं है। और महाराष्ट्र में तो कितने खेड़ू आपघात करते हैं, कर्जा लेते हैं और कर्जा चुप तो नहीं कर सकते हैं, आपघात कर लेते हैं। तो देखा गया है कि पहले तो धन की गड़बड़ी है, धन की भी बीमारी पहले बताई, फिर संबंध में कितने संबंध है, यहां तो कम है लेकिन विदेश में लव मैरिज करते हैं और एक दो को पसंद करके लव मैरिज करते हैं, वो 10 साल भी नहीं टिकता। कई तो 1-2 साल में ही सेपरेट हो जाते। बहन यहां आके बैठो, आपको बोलती हूँ, काला मास्क पहना है ना, आगे बैठो, यहाँ ये खाली पड़ा है सोफा और आप लोग नजदीक नजदीक नहीं बैठो। हाँ, सेपरेशन इतना होता है 1-2 साल में, छुट्टी, मतभेद और सेपरेट हो गए। क्योंकि वहां तो खुद कमाते हैं तो जरा भी सहन नहीं कर सकते, यहां तो समाज के डर से साथ में रहना पड़ता है। माताएं कमाती नहीं, माँ बाप भी कहेंगे हमारे पास नहीं आओ। तो इसलिए मार खा के भी घर में रहना पड़ता है, गालियां खा के भी घर में रहना पड़ता है। तो संबंध में गड़बड़ है और लड़ाई झगड़ा आपस में चलता रहता है, प्रॉपर्टी के लिए केस करते हैं। चाहे लौकिक है, भाई भाई है, भाई का भी खून कर लेते हैं पैसे के लिए, तो प्रॉपर्टी के कारण झगड़ा होता है। और नौकरी में भी तकलीफ है, कोई कहते हैं हमारे पास बहुत काम लेते हैं, कोई कहते हैं हमारा बॉस है उसको फेवर करते हैं और हमारी काम की अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तंग हो जाते हैं। तो ये देखा गया संबंधों में भी गड़बड़ है और धन दौलत के लिए जिसके पास धन है उसको भी चिंता है कि कोई चोरी ना जाए, कितना संभाल करके रखना पड़ता है। विदेश में तो तीन तीन ताले दरवाजे के होते हैं, पहले ग्राउंड फ्लोर पर ताला होता है तो पहले स्विच दबाओ फ्लैट का तो जवाब देंगे कि हाँ, फिर वहां से स्विच दबाएंगे तो नीचे से दरवाजा खुलेगा, जनरल दरवाजा, फिर ऊपर भी डबल लॉक होता है, ऊपर बेल बजाओ तो पहले देखेंगे खिड़की से कि कौन आया है, हाँ कोई पहचान वाली व्यक्ति है तो ही खोलना है, तो वो भी डबल लॉक होता है फ्लैट को, तो चोरी की चिंता है, पैसा है तो चोरी की चिंता है, पैसा है तो कोई लूट जाएगा, धंधा है तो इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं तो टैक्स वालों की चिंता। कल या परसों ही बाबा ने कहा इनकम टैक्स वालों की रेड होंगी या पुलिस आएगा, उन दिनों में तो अनाज का भी राशन होता था तो अनाज भी ज्यादा भरा है तो भी गड़बड़। तो इसी लिस्ट से देखते हैं, पैसा है तो भी चिंता है, नहीं है तो भी चिंता है कि परिवार वालों को कैसे खिलाएंगे, और चिंता है तो खुशी थोड़ी रहेंगे, नशा थोड़ी रहेगा। और सिडनी में एक जवान था, उसका किसी से प्यार हो गया था, तो माँ ने कहा जो तुम उससे शादी करेंगे तो हम तुमको वर्षे से बाकात करेंगे। तो भाई ने क्या किया, जवान ने माँ बाप बहन सबका खून कर दिया और कायदा भी तो ऐसा है ना आजकल, पकड़ गया तो वो तीन तो मर गए, उसको भी जेल में बैठना पड़ा। और लंदन में कायदा है कि आप जीते जी अपनी प्रॉपर्टी बच्चे को दे दो तो कोई बात नहीं, पर मरने के बाद यदि वो लड़के को प्रॉपर्टी मिली तो उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो एक बाप ने क्या सोचा, चलो मैं बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी कर दूं। तो उसने क्या किया, लड़के के नाम पर प्रॉपर्टी की फ्लैट, और बहू तो आप जानते हो ना, तो लड़के और बहू ने बाप को निकाल दिया फ्लैट से कि ये तो हमारा फ्लैट है आप जाओ। और मुंबई में तो हमने सुना है कई लोग क्या है, बूढ़े माँ बाप है ना, उसको अनाथ आश्रम में या बूढ़ा घर होता है ना, वहां जाकर बाहर ही पटक देते, अंदर ऑफिस तक भी नहीं ले जाते, बाहर छोड़ के चले जाते। और एक भाई ने ऐसे किया, अपने माँ बाप को प्रॉपर्टी लेने के लिए अपने माँ बाप जो बूढ़े थे 80 वर्ष के करीब, उनको जंगल में छोड़ के आया बांध के। तो क्या है, कि आज पैसा है तो भी जान का खतरा है, तो चिंता तो रहेंगी लोगों को कि क्या होगा हमारा बुढ़ापे में। और आजकल तो नेचुरल कैलेमिटीज, आप सुनते हैं बिहार में हर साल ब्रह्मपुत्रा में फ्लड्स, बाढ़ आती है। अभी आजकल चेन्नई केरला में भी तूफान, तो नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी कितना नुकसान होता है, कितने के घर टूट जाते हैं, कितनों का सब सामान खत्म हो जाता है। फिर दुनिया में दिन प्रतिदिन इविल स्पिरिट्स भी बढ़ते जाते हैं, भूत प्रेत मैली विद्या आदि आदि, हाँ तांत्रिक विद्या आदि आदि का जोर बढ़ता जाता है। तो समझो उससे भी तकलीफ होती है। और लोगों के संस्कार तमो प्रधान हो गए, हमने तो देखा है दुनियावी लोगों को तो तमो प्रधान संस्कार है, ब्राह्मणों में भी तमो सत्व रजो सब प्रकार के लोग है ना। तो क्या होता है कि एक दो से संघर्ष होता रहता है, कलेश होता रहता है, एक दो से टेंशन होता रहता है। तो ऐसी दुख अशांति वाली दुनिया में हम सदैव खुश रहे और नशे में रहें, खुशी एक बात है पर नशा कि हम कौन है, नशे में और अहंकार में क्या फर्क है। अहंकार में देहभान है, हाँ अहंकार में मैं ऊंच कुल का हूं, मेरी पोजीशन ऊंची है, मैं गोरा हूं, मैं खूबसूरत हूं, अपनी विशेषता का देहभान के कारण अभिमान। और नशे में क्या है, आत्मभान है कि मैं, हम भी कहते हैं ना हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं, तो कई लोग समझते हैं आपको तो अभिमान बहुत है। नहीं, हम कहते हैं हम तो ऊंच है, आप भी ऊंच बन सकते हो, हमारी तो चाहना है कि आप भी ऊंच बने। और अभिमान में क्या है, मैं ऊंच हूं तुम शूद्र हो, तुम हरिजन हो अछूत हो, हमारे कुएं का पानी नहीं ले सकते हो, आदि आदि। तो वो दूसरों का अपमान सम करते हैं, उसको नीच समझते हैं, अपने को ऊंच समझते हैं। तो ये अभिमान, उसका अपमान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। जिसको अभिमान है वो कहेगा मुझे आप रिस्पेक्ट दो, मैं बॉस हूं, मैं जो कहता हूं करूं। तो बाबा हमें ज्ञान से खुश मिजाज भी बनाते हैं तो नशा भी चढ़ाते हैं। ज्ञान हमें कैसे मदद करता है, तो ये हमको याद रखना है कि हमारा ब्राह्मणों का मेन भोजन, आत्मा का भोजन मुरली है। मुरली सुनना, मनन मंथन करना, उससे क्या होगा, खुशी भी रहेगी, नशा भी चढ़ेगा। हाँ, और हमें ज्ञान है, ड्रामा है, वैरायटी लोग है, आपके बच्चे भी कई होंगे, ऐसे होंगे जो आपको उसके लज्जा आएंगी कि ऐसा बच्चा कैसे है हमारा। आजकल तो बच्चे हैं ना, गलत संग में आकर क्या क्या करते हैं, ड्रग्स, खास पंजाब के तरफ बहुत बच्चे ड्रग्स का उपयोग करते हैं, जुआ खेलना, पैसे गंवाना, एक्सीडेंट करना आदि आदि। तो क्या है कि ड्रामा का हमें ज्ञान है, वैरायटी ड्रामा है, हर एक का वैरायटी संस्कार है। तो जब ये बुद्धि में रहता है कि वैरायटी संस्कार है और हम साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, तो क्या होगा, हमें दुख नहीं होगा। और कर्मों का हिसाब किताब भी मालूम है कि हमारा बच्चा ऐसा है, कुछ कर्मों का हिसाब किताब है। बच्चा है तो भी दुख है, नहीं है तो भी दुख है ना। आज किसी को बच्चा नहीं है तो कितना तड़पते हैं, कितना डॉक्टरों का इलाज करते हैं कि हमको बच्चा हो जाए। और बच्चा बीमार हुआ तो भी दुख, बच्चा उल्टे रास्ते पर गया तो भी दुख। तो कर्मों की गति हमको मालूम है, हमारा जिनके साथ हिसाब किताब है, चाहे पति ठीक नहीं है, चाहे पत्नी ठीक नहीं है, चाहे माँ बाप ठीक नहीं है, चाहे बच्चे ठीक नहीं है, सब कर्मों का हिसाब किताब है। तो जब ये बुद्धि में ज्ञान है ना कि कर्मों का हिसाब किताब चुकतु हो रहा है, तो क्या है, दुख नहीं होता। क्योंकि एक तो ज्ञान चाहिए, पर ज्ञान के साथ योग भी चाहिए। क्योंकि हमने तो देखा है कई ज्ञानी ब्राह्मण, कोई मित्र संबंधी मर जाता है, इतना रोते हैं। मालूम है हिसाब किताब पूरा हुआ फिर भी रोना। कई ज्ञानी है, मोह इतना है जो माँ बच्चों की आदत के कारण उनको पैसा गहना सब कुछ दे देती है। वो शराबी बच्चा है या ड्रग लेने वाला है, माँ को तंग करता है, माँ पैसा दे देती है। तो क्या है कि, और इतने तक ये ज्ञान तो है, परंतु समाज में हम रहते हैं, बच्चों को शादी तो जरूर करनी है। हमने तो एक एग्जाम्पल देखा, एक भाई सेंटर पर रहता था, सरेंडर हो गया था, माँ बाप ज्ञान में थे, सेंटर से निकाल के उसकी शादी करा दिया। तो क्या है, कई है ज्ञान होते भी ज्ञान पर नहीं चलते। तो ज्ञान में चलने के लिए शक्ति चाहिए, वो योग द्वारा मिलती है। जितना हम योग में रहेंगे ना, तो क्या होगा, वो ज्ञान पर चलने की शक्ति रहेंगे। इसलिए योग का अभ्यास बहुत जरूरी है, और ज्ञान भी ब्राह्मणों का जीवन का आधार पहला तो है मुरली। आप में से कौन है जो मुरली कभी मिस नहीं करते, जरा हाथ उठाओ, कभी मुरली मिस नहीं करते। देखो गोविंद 50% से कम। हाँ, तो चाहे घरों में भी रहते हैं, आजकल तो पीस ऑफ माइंड में, हमारे हर एक के घर में टेलीविजन होगा ना, किसके घर में टेलीविजन नहीं है, एक दो, किसके पास फोन नहीं है, देखो फोन सबके पास है। और आज का तो मुरली फोन पर भी मिल सकती है, और फिर कभी भी पढ़ सकते हैं। रोज की मुरली फोन पर कभी भी पढ़ सकते हैं। चलो टेलीविजन में तो टाइम पर आती होंगी ना, पर फोन पर तो यूट्यूब में सारे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये लक्ष्य रखो कि मुरली रोज पढ़नी है। मुरली पढ़ने के सिवाय ब्रेकफास्ट नहीं। और अपने को गॉडली स्टूडेंट समझना, चाहे आप गृहस्थी हो, गॉडली स्टूडेंट पहले। और स्टूडेंट का काम क्या है, स्टडी भी करो होमवर्क भी। तो सिर्फ मुरली सुननी नहीं है, पढ़नी नहीं है, पॉइंट्स नोट करो। और नोट करो आज मुरली में कौन सी नशे की पॉइंट थी, क्योंकि नशा रखना है ना। तो जो भी अपने को मुरली में ज्ञान की पॉइंट्स है, योग की पॉइंट्स है, सेवा की पॉइंट्स है, धारणा की पॉइंट्स है, नोट करो कि आज मुझे क्या धारण करना है, क्या मनन करना है। तो कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था शाम को कि आपके पास कितना खजाना है, वो ध्यान में रखेंगे तो नशा चढ़ेगा ना। देखो किसके पास लाखों करोड़ों रुपया है तो कितना नशा रहता है ना। और बाबा ने हमें अविनाशी खजाने दिए, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय का खजाना है हमारे पास। तो अविनाशी खजाना जमा करो और उसका नशा रखो कि मैं कितना धनवान हूं, हमारे पास जो मिलकर जमा की है कम से कम 21 जन्म चलेंगे। तो दादी जानकी हमेशा कहती थी ओम शांति, पहला ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप, तीसरी बार ओम शांति कहते थे तो दूसरी बार ओम शांति मैं किसकी हूं, कि मैं शिव बाबा की बच्ची हूं, शिव बाबा की स्टूडेंट हूं, शिव बाबा मेरा गुरु है तो मैं फॉलोअर हूं, और मैं क्या बनने वाली हूं। तीसरी बार जब बोलती थी कि मैं विश्व का मालिक बनने वाली हूं, तो कितना नशा रहे ना, हाँ, जो पढ़कर बैरिस्टर बनने वाला होता है ना, तो उसको भी नशा रहता है कि मैं बैरिस्टरी पढ़ाई पढ़ता हूँ, मैं डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ता हूँ। क्योंकि जब विश्व के मालिक बन जाएंगे तब तो बुद्धि में इतना नशा नहीं रहेगा, पर अभी नशा रह सकता है कि मैं विश्व का मालिक बनने वाली हूँ। तो ये सदैव बुद्धि में रहे, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, क्या बनने वाली हूँ, मेरे पास कितना खजाना है। तो जितना खजाना सामने रहेगा उतना नशा रहेगा। और जब नशा है, खुशी है, तो दुख की लहर नहीं आ सकती। तो मैं सुख के सागर की संतान हूं। मैं पूज्य बनने वाली, पावन बन रही हूं। तो ये बुद्धि में रखने से नशा रहेगा। तो इसलिए अपने आप को हमेशा अभी साधारण नहीं समझना, ना हमारी साधारण एक्टिविटी हो, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, कौन सा सोशल फंक्शन अटेंड करना है, सारा दिन वो नहीं सोचना है। अभी हमारी बुद्धि में सारा दिन क्या होना चाहिए, ज्ञान का मनन मंथन, स्वदर्शन चक्र घुमाना है और बाबा की याद, बाबा से चिटचैट। तो ज्ञान योग के सिवाय और कुछ ना हो। तो जितना अपना टेंशन रहेगा ना, तो आप देखेंगे कि आपको नशा चढ़ेगा। देखो, दुनिया वालों को नशा चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, शराब पीकर नशा चढ़ाते हैं या ड्रग्स लेके नशा चढ़ाते हैं, परंतु उससे क्या होता है, नुकसान होता है ना उनको। ड्रग्स से टेम्पररी तो नशा चढ़ता है, कितना भी गरीब होगा समझेगा मैं तो राजा हूं, परंतु नशा उतरा, कंगाल के कंगाल और भी नुकसान। जो शराबी होगा तो उसका लीवर खराब हो जाएगा, आंत्र सारा खराब हो जाएंगे। जितना नशा करेगा भूख नहीं और इमोशन भी कंट्रोल में नहीं, मारपीट करेगा, किसी के साथ भी सो जाएगा और नुकसान घर वालों को पहुंचाएगा। हाँ, तो वो नशों में नुकसान है। इस नशे में कोई खर्च नहीं, पैसा भी खर्च नहीं, और भी संबंध अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि जितना हम खुश मिजाज होंगे क्या होंगे, जिसके भी संपर्क में आएंगे उनको खुश कर देंगे, खुद भी संतुष्ट रहेंगे औरों को भी संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए हमें अभी अपने आप को देखना है कि हमने अपने आप को कितना परिवर्तित किया है। हमारा साधारण बोलचाल ना हो, सब कुछ रॉयल हो, क्योंकि देवता बनना है ना, विश्व महाराजन बनना है, तो संस्कार हमारे रॉयल होने चाहिए। खान पान बोल चाल रहन सहन सब दैवी होने चाहिए। तो इसलिए अपने ऊपर अभी बहुत अटेंशन रखना है, पुरानी चाल नहीं चलनी है। पुरानी चाल में क्या होता था, जो मन में आता था बोल देते थे, कड़वा बोल देते थे, कभी गुस्से में आके बोल देते थे, कभी ऊंचे टोन से बोल देते थे। अभी क्या है, बाबा कहते हैं मीठा बोलो, काम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो कि फिर पछताना ना पड़े। तो अपना संकल्प, बोल, कर्म, हरेक के ऊपर बहुत ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखो मैं कौन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, फरिश्ता बन रहा हूं, देवता बन रहा हूं। तो अपनी दैवी चलन हो और रॉयल्टी हो, तो बोलना, चलना, खाना पीना सब रॉयल। देखो रॉयल लोग होते हैं ना, आज के कलयुगी कलयुगी लोग हैं ना रॉयल, वो भी क्या करते हैं। आज लंदन की क्वीन है ना, जब ही चाहे जहां चाहे नहीं जा सकती है, उसको पहले से प्लान बनाना पड़ता है, उसको सिनेमा में भी जाना होता है ना, पहले से बुकिंग करानी होती है कि उसका जो बॉक्स है स्पेशल वहीं बैठेंगे। और किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, और रॉयल लोगों के साथ ही बातचीत करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, और उनको खाने पीने का भी ढंग ऐसा होता है ना, चम्मच यहीं हो, कांटा यहीं हो, नाइफ यहीं हो, हाथ टेबल पर नहीं रख सकते हैं, खाना समय आवाज नहीं कर सकते हैं। तो रॉयल के सारे मैनर्स होते हैं। तो इसलिए बाबा ने यज्ञ में शुरू से ऐसे रखा था नियम, कोई बड़े आवाज से ना बोले, ऊपर से नीचे बात ना करें, क्योंकि उन दिनों में तो मकान छोटे छोटे थे ना, एक ही मंजिल ऊपर छत, तो छत टेरेस से कोई नीचे बात ना करे, नहीं तो एक मंजिल है ऊपर से भी नीचे किसी से बात कर सकते हैं नहीं, या एक बाजू बाजू में मकान होते हैं, बीच में दो चार फीट की जगह है, तो एक छत से दूसरी छत से भी बात कर सकते हैं नहीं, वो नहीं करना है। जिनको बात करनी है, जिससे भी बात करनी है, धीरे से। ओम शांति। तो बाबा ने हमें बहुत बहुत टाइटल दिए हैं, उसका नशा होना चाहिए, स्वमान के टाइटल दिए। आप सफलता के सितारे हो, उम्मीदों के सितारे हो, आप धरती के सितारे हो, आप सल्वेशन आर्मी हो, शिव शक्ति हो, बाबा के जो भी टाइटल है, मास्टर, मास्टर सुखदाता, मास्टर लिबरेटर, मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर प्यार का सागर, मास्टर सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, दया का सागर, जो भी बाबा के टाइटल है उसके हम मास्टर हैं। तो ये सब टाइटल को अपने में ध्यान में रखो और वो नशा रहे कि मैं कौन हूं। और सिर्फ नशा नहीं रखना है, प्रैक्टिकल में वैसा बनना है, तब तो नशा कायम रहेगा ना। बाकी सिर्फ बुद्धि में ज्ञान है वो नहीं चलता है, प्रैक्टिकल में वो ज्ञान लाना है। तो जितना प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो खुशी भी रहेंगी, नशा भी रहेगा, हर एक के साथ संबंध भी अच्छा रहेगा, खुद भी संतुष्ट रहेंगे और भी हमारे से संतुष्ट रहेंगे। कल भी बाबा ने कहा ना, राज्य अधिकारी माना, पहले स्व के ऊपर अधिकार हो, अपने मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो, और प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। तो इसलिए खुद अपने में शक्ति नहीं भरनी है, औरों को भी शक्तिवान बनाना, खुद सिर्फ पावन नहीं बनना है, औरों को भी पावन बनाना है, खुद बाबा से नहीं लूटना है, औरों का कनेक्शन भी बाबा से जुड़वाना है। तो उन्हों को भी डायरेक्टली बाबा से मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा अभी तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, अपने पर बहुत अटेंशन हो कि हमारे मन में कोई व्यर्थ संकल्प ना चले, सदैव समर्थ संकल्प हो और सदैव खुश मिजाज, हमारा चेहरा इतना खुश हो जो हमारे सामने आने वाले खुशी का अनुभव करें। ऐसा वातावरण क्रिएट करना है, शांति का, शक्ति का, खुशी का। जैसे देखो, कल ही गुलजार दादी को देखा सिर्फ उसमें लाइन पर, स्क्रीन पर, कितना अनुभव हुआ, शांति का, खुशी का अनुभव हुआ ना, शक्ति का। मूर्तियों में कितनी शक्ति है, आज हमारी यादगार मूर्तियों में इतनी शक्ति है, मंदिर में जाओ, दर्शन करो, खुश हो जाओ, अपना दुख भूल जाओ। तो हमारे में कितनी चैतन्य अभी हम है, कितनी शक्ति हो जो हमारे सामने आने वाले शांति, सुख, आनंद की अनुभूति करें। तो इसका लक्ष्य रखना है, अपने को साधारण गृहस्थी समझ कर नहीं चलाना, अभी अपने आप को फरिश्ता सो देवता समझकर चलना और चलाना। ओम शांति। अभी किसी का प्रश्न हो पूछ सकते हो। माइक देना हम को।
ओम शांति। किसी के मन में कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है?
बाबा की मुरली में अक्सर ऐसा आता है कि
थोड़ा जरा ये निकाल के बोलो नजदीक आ।
बाबा ऐसा कहते हैं ना कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही जानते हैं और सही योग भी कोई ही कर पाते हैं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डाली ना दीदी।
इनका कहना है कि बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, वो कोटों में कोई ही मुझे जानते हैं और मुझे यथार्थ रीति याद भी नंबर वार सभी बच्चे करते हैं, तो उस पर थोड़ा।
बाबा अव्यक्त है, निराकार है और उसकी जो महिमा है अपरंपार है। अभी बच्चे हैं वो बाबा को पूरा पहचानते नहीं, जो है जैसा है पहचानने वाला एक कोटो में कोई है। क्या होता है कि हमारे जो भक्ति के संस्कार है वो जल्दी छूटते नहीं, क्योंकि भक्ति में हमको एक तो साकार को देखने की आदत है। अब निराकार को समझना सहज नहीं है, निराकार को याद करना भी सहज नहीं। और दूसरा ये है कि हमें कई बातों में इंटरेस्ट है, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आते ही टोटल वैराग्य आ गया। तो क्या है, जिस बात में हमारा इंटरेस्ट है तो नेचुरली है हम उस बात का सोचते हैं, उसमें अपना समय लगाते हैं। तो बाबा को याद करना पहले तो मुश्किल, क्योंकि मन इधर उधर भागता है। दूसरा, जब याद नहीं तो शक्ति नहीं मिलती, इतना अनुभव नहीं होता, क्योंकि जितना अनुभव होता जाएगा हमारा बाबा में विश्वास बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बाबा आजकल यही कहते हैं, अनुभव करो, अनुभवी मूरत बनो और उनको अनुभव कराओ, क्योंकि सुनने में तो बहुत बातें आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ब्राह्मणों से वो दुनियावी लेक्चर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, साइंटिफिक कारण देंगे। आज दीपक चोपड़ा है ना, दीपक है ना उसका नाम, दीपक चोपड़ा का, सारी दुनिया में लोग विश्व में खास विदेश में उसका नाम बहुत है। क्योंकि साइंटिफिक बातें करता है, हम अपने अनुभव की बातें करते हैं। तो क्योंकि आजकल लोग हैं कहेंगे हमको साइंस का प्रूफ दो, प्रूफ दो, हमको दर्शन कराओ तब हम माने। साइंस वाला कहेंगे ना, हम देखे तब माने ना। तो हम तो न दिखा सकते हैं, बाबा का दर्शन नहीं करा सकते हैं, हाँ अनुभव करा सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि बाबा का आज सबको पूछो, किसने बाबा को साजन के रूप में अनुभव किया है, किसने बच्चे के रूप में अनुभव किया है, किसने मित्र के संबंध में अनुभव किया है, क्योंकि बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है। बाबा की इतनी महिमा है गुणों की, जो सबका अनुभव किया है। तो जब तक अनुभव नहीं है तब तक उसको अच्छी रीत से कैसे जानेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि आजकल भी मौलियों में बाबा कहते हैं 8-10 साल वाले महारथी माया हप कर लेती है, गज को ग्राह खा लेती है। तो माया क्यों हप कर लेती है, निश्चय नहीं है, या संग ठीक नहीं है, या उन्होंने अपने विकारों पर विजय पाया नहीं है, इसलिए माया खींच जाती है। यदि निश्चय है, पूरी बाप की पहचान है, बाप को कौन छोड़ेगा, छोड़ सकता है क्या? निश्चय नहीं है, पूरा अनुभव नहीं है, तब छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरा कोई प्रश्न आ गया?
ओम शांति दीदी जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म संबंध के चलते किन आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब चुकतू हो गया है, ये हम कैसे पता लगे हमें?
जैसे कोई आत्मा है उससे हमारा हिसाब चुकतू हो गया है, तो उसकी निशानी क्या रहेगी, उससे हमारा हल्कापन?
हिसाब चुकतू हो गया तो
माना कोई आत्मा से हमारे हिसाब हल्के हो रहे हैं या चुकतू हो रहे हैं, तो हम क्या फील करेंगे उस?
क्या फील करेंगे जी? निशानी क्या है जी? क्या हमारा हिसाब किताब चुकतू हो गया? हिसाब चुकतू हो जाएगा तो वो चला जाएगा
या हमारे रिलेशन हल्के हो जाएंगे जैसे
या तो वो हमारे हमारे से सेपरेट हो जाएगा। हाँ, जैसे आज देखते हैं ना, बच्चे की शादी हुई, कहा माँ बाप को आप अभी अपना घर संभालो, हम अपना घर बना लिया है, हम चले, हिसाब किताब पूरा हुआ। तो या तो जिंदे जिंदे चला जाएगा या तो शरीर छोड़ के चला जाएगा। जब तक हिसाब किताब है तब तक आपके साथ में है। हिसाब किताब पूरा किया, ओम शांति, आप अपने को संभालो, हम अपने आप को संभालेंगे करके रास्ता अपना कर लेंगे।
कई जगह भाई दीदी ऐसा होता है तो फिर चुकतू नहीं हुआ ना माना से तो आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा दीदी, कई अब आपका प्रश्न दूसरा है। दीदी कहती कई आत्माएं ऐसी हैं जो शरीर छोड़ने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो उनसे कैसे चुकतू हो, ये सोचो ना।
अच्छा
दीदी, इनको वो सूक्ष्म में दिखाई देती हैं, कई ऐसे हैं जो शरीर छोड़ दी फिर भी सूक्ष्म में दिखाई देती।
आप उनको क्या करो, शांति का दान दो, बाबा को कहो बाबा इसको मुक्ति दे दो। क्योंकि क्या होता है, कईयों का ये जो भूत प्रेत कहते हैं ना, कोई अच्छे भी होते हैं, क्योंकि हमने सुना है कोई कोई अच्छे भी होती है आत्मा, हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, हमने सुना एक लंदन में माता शरीर छोड़ा, उसके 5 बच्चे थे। अब वो माता का थोड़ा मोह था बच्चों में, रोज रात को आकर जो किचन में गंदे बर्तन पड़े थे ना, वो लोग वॉश बेसिन में रख देते हैं, सवेरे साफ करेंगे ऐसे, वो माता आकर रात को साफ करके जाती थी। तो कोई कोई अच्छे भी होते हैं जो काम काज करके जाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो तंग करते हैं, भूत प्रेत होते हैं ना, कोई तंग करते हैं और कई प्रकार के होते हैं। तो हमें क्या करना है, डरना नहीं है उस आत्मा से जो अशरीरी या भूत है, प्रेत है, जो भी है, डरना नहीं है, उसके बारे में बातचीत नहीं करनी है, किसी को भी कहना नहीं है कि आज मैंने उस आत्मा को देखा, आज रात को आया था, मेरे पास आया था, वैसे न बातचीत करो, न सोचो, न उसको इनवाइट करो, न डरो। परंतु उसको योगदान दो ताकि वो मुक्ति को पावे। और यदि आपको तंग भी करता है, क्योंकि कई भूत प्रेत है ना, तंग करते हैं, क्योंकि हमने कईयों का अनुभव सुना, ऐसे फील होता है जैसे गले को दबाता है, वो हाथ उठाना करने की कोशिश करती, हाथ उठता नहीं, चिल्लाने की कोशिश करती है, बोल नहीं सकती है। तो उस समय क्या करना है, यदि तंग करने वाली आत्मा है तो लेटे नहीं रहो, बैठ जाओ, और उस समय दिया जलाओ, या रात को भी अपने घर में दिया जलाओ, धूप जलाओ, और जैसे भी ऐसे आभास होता है बैठकर योग करो। और तंग करने वाला हो तो कहो चले जाओ, मेरे साथ भगवान है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो आप जितना शक्ति स्वरूप बनेंगे वो चला जाएगा।
ओम शांति दीदी। बाबा अक्सर मुरली में करते हैं खाना खाने से पहले बाबा को भोग लगा के खाना है, मगर अगर परिवार में अकेले ध्यान में चलते हैं, खाना अगर युगल या माताजी बनाते हैं वो ज्ञान में नहीं है, वैसे में क्या करना चाहिए?
दीदी, जैसे घर में ये अकेले ज्ञान में चलते हैं, युगल है या परिवार ज्ञान में नहीं है, तो जैसे भोजन जो वो बनाते हैं तो हम कैसे, क्या हम उनको योग करके दृष्टि देके खा सकते
हैं? यदि भोजन बनाने वाला ज्ञान में नहीं है, कम से कम कोशिश करो प्याज लहसुन बगैर का खाना, वेजिटेरियन खाना बनाता है। और दूसरा एम रखो कि वो खाने के पहले अच्छी दृष्टि दो, 5 मिनट योग लगाओ, उस भोजन को शुद्ध करके फिर खाओ, क्योंकि नेचुरली है ये भाइयों को टाइम नहीं मिलता है खाना पकाने का, ये वो झंझट रहता है, और घर वाले भी नाराज हो जाते हैं, हाँ, चाहे माँ बाप है, चाहे पत्नी है, चाहे बहन है, क्योंकि इंडियन घर में ये रिवाज ही नहीं कि भाई लोग खाना पकाए, इसलिए वो घरवाली भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए क्या करो, योग में रहकर खाओ, और उनको भी कहो बाबा के अच्छे अच्छे गीत रिकॉर्ड करके रखो और उनको कहो ये गाना सुनते सुनते भोजन बनाओ, क्योंकि भगवान को तो मेजोरिटी मानते हैं इंडिया में, चाहे माँ है चाहे बहन है चाहे पत्नी है, भगवान को याद करके बनाओ तो प्रसाद हो जाएगा। तो इसलिए भोजन को शुद्ध करके खाओ।
नहीं
ठीक है
दीदी, इसमें पांच ग्रुप दीदी हम लोगों ने, दीदी पांच ग्रुप ऐसे बनाए थे 9:30 से 10:30, जैसे सुबह दीदी मुरली का रिवीजन भी होता है और मुरली के आधार पर सेपरेट सेपरेट योग होता है। दीदी जैसे 100 लोग हैं तो 20-20 लोग, माना पांच भाई हैं तो 20-20 एक एक ग्रुप को लेके बैठते हैं, फिर वो प्रॉपर अनुभव कराना योग तो बहुत अच्छा, और शाम को भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ज्योति बिंदु ग्रुप हाथ उठाए, 500 रूप के ऊपर डाला है दीदी, देवता पूज्य ब्राह्मण और फरिश्ता, दीदी ये पांच ग्रुप हैं ऐसे तो बहुत अच्छा। उसमें फिर पांचों के फिर हर दिन अलग अलग एक एक माना ग्रुप चेंज कर लेते हैं ऐसे। तो दीदी को गिफ्ट देंगे ना आज सबको, दीदी के निमित्त दीदी के द्वारा है ना, बाबा के यज्ञ से आपको एक सौगात मिली, तो अभी दीदी को क्या सौगात देंगे बताइए आप सब। दीदी ने क्या कहा कि बिना मुरली सुने ब्रेकफास्ट नहीं, तो कौन कौन करेगा? आधों ने तो मुरली की, आधे से कम थे मुरली में सुनने वाले रेगुलर, तो अभी रेगुलर मुरली सुनेंगे पक्का,
पढ़ेंगे सुनेंगे
मोबाइल में है ही है ना। आज यज्ञ में दीदी से, दीदी हमारे समक्ष हैं। दीदी शुरू में हमने देखा दीदी 15 दिन भारत में 15 दिन विदेश में, क्योंकि दीदी पूरे एशिया जोन, पूरा एशिया में जितने सेंटर हैं, ऑस्ट्रेलिया है ना, भारत तो है ही है, ज्ञान सरोवर तो है ही है, लेकिन दीदी 15 दिन विदेश और 15 दिन यहाँ, इस तरह से अथक सेवाएं। और दीदी शाम को भी आती थी तो दीदी 7 से 7:30 योग में पहुंच जाते थे, और कितनी भी तबीयत कैसी भी हो दीदी मुरली सुनाने, कई बार हमें रिक्वेस्ट करना होता था कि दीदी आज मुरली आप, क्योंकि तबीयत के अकॉर्डिंग, लेकिन आज दीदी और हम सब बड़ों को देखते हैं जो अमृत वेले के प्रति और मुरली के प्रति जो प्यार है, तो हम सबको ये सीखना है ना। तो आज दीदी आप सबकी त्याग तपस्या, हम लोग तो मक्खन खा रहे हैं ना, हम लोग बने बनाए पे आए, और आप सबने 60 साल में इतना कुछ किया है ना, उस आधार पे हम आपकी मेहनत का हम फल ले रहे, तो हम सब भी रिटर्न देंगे ना कुछ, तो अपने जीवन के लिए अच्छा है मुरली सुनेंगे तो आपको फायदा है ना। तो ठीक है, रोज मुरली सुनेंगे उसके बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है दीदी, ये आप सबको, आपको गिफ्ट है सबकी तरफ से पक्का। हाँ थैंक यू सो मच दीदी, दीदी की आज थोड़ा व्यस्तता भी थी तबीयत, फिर भी दीदी ने समय दिया, इसके लिए दिल से थैंक्स दीदी का, ठीक है योग जी। 5